अपने घर देश में बदले परिवेश में आंधी में उड़े और लहर में बहे, तिनकों से ज्यादा अब कुछ ना हम रहे। ऊंचे थे पर्वत थे हम, गहरे थे सागर थे हम, चांदी के पत्र पर लिखे सोने के आखर थे हम। लेकिन बदलाव में वक्त के बहाव में भीतर ही भीतर कुछ इस तरह ढहे, खंडहर से ज्यादा अब कुछ ना हम रहे। प्रख्यात गीतकार एवं कवि पंडित श्री कृष्ण तिवारी जी ने जीवन की सच्चाई कही है। वक्त के बहाव में कभी कभी सब कुछ बह जाता है, ढह जाता है और हम टूट कर बिखर कर रह जाते हैं। ऐसे ही एक बहाव, एक तूफान ऐसा आया कि हमारे देश की संस्कृति का उद्गम स्थल, भारत की शान कहे जाने वाले कश्मीर में ऐसा सब कुछ बदला कि खंडहर से ज्यादा अब वहां कुछ नजर आता ही नहीं, मातम सा फैल गया है। इतना दर्द, इतनी वेदना का जहां साम्राज्य फैला हो, वहां के लोगों पर क्या बीती होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। और इस दुख की पराकाष्ठा तो ये हुई कि कश्मीर के पंडितों को अपनी जड़ों, अपने घर द्वार सब कुछ छोड़कर तो आना ही पड़ा, और वहां से आकर अपने ही देश में उन्हें शरणार्थी का सा जीवन जीने को मजबूर किया गया। कहते हैं ना कि दर्द ही जिंदगी का आखिरी सच है, दर्द को आप किसी से भी साझा नहीं कर सकते, अपना अपना दर्द हमें अकेले ही भोगना होता है। लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो किसी एक या दो या चार के हिस्से ही नहीं आते, बल्कि लाखों लोग जिसकी चपेट में आते हैं और पीढ़ियां तक उसका दर्द झेलती रहती हैं। ऐसा ही एक दर्द कश्मीर विस्थापितों का भी है, जिन्होंने 3 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद आज भी सुकून की सांस शायद नहीं ली है, क्योंकि अपनी जड़ों से तो वे उखाड़ ही दिए गए हैं। सब कुछ गंवा कर भी इतनी विपरीत परिस्थितियों में जीने को मजबूर इन लोगों की व्यथा दिल को झकझोर कर रख देती है, और लगता है कि काश कुछ ऐसा होता कि हम इनके लिए कुछ कर पाते। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित चर्चित उपन्यास दर्दपुर और अपनी रचना समय के बाद के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय का राष्ट्रपति के हाथों सम्मान प्राप्त करने वाली सुप्रसिद्ध लेखिका क्षमा कौल जी के साथ मैंने एक संवाद किया, जिन्होंने दर्द ही लिखा है क्योंकि दर्द को उन्होंने भोगा है। उनका उपन्यास दर्दपुर कश्मीर ही नहीं पूरे भारत के दर्द की कहानी कहता है। ऐसा लेखन, ऐसे कथोपकथन कि एक दृश्य ही हमारे आगे उपस्थित हो जाता है। कश्मीर में हुए जनसंहार ने, उत्पीड़न ने, शोषण ने क्षमा कौल जी जैसी लेखिका को व्यग्र एवं बेचैन बनाकर अपनी मूक वेदना एवं पीड़ा को वाणी देने के लिए बाध्य कर दिया। उनका स्वयं का भोगा हुआ दुख दर्द घनी भूत पीड़ा से ओतप्रोत होकर दर्दपुर उपन्यास में छलक उठा है। कोई भी रचनाकार मौन के अधीन नहीं जी सकता, आपकी रचनाएं इस बात का प्रमाण है। आपने अपने शब्दों से, अपनी लेखनी से मौन को मुखरित किया है। तो आइए क्षमा कौल जी से एक संवाद करते हैं। जी नमस्ते मैम।
नमस्कार 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 भावना जी,
शुभन पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आपसे बात करने का अवसर मैम जब मुझे मिल रहा है, तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने निर्वासन का दर्द झेला है और उसी दर्द को अपने साहित्य में आपने स्थान दिया है। तो और हम तो सहते हैं मैम, अगर वही कहते हैं तो वो बात दिल को छूती है, आपकी बातों ने मेरे दिल को छुआ है। तो इसलिए पहली शुरुआत तो मैं यही करना चाहूंगी कि आप अपने आरंभिक जीवन के बारे में हमें कुछ बताएं,
अपने
जी जी
शेषों कुछ स्मृतियां अगर आप
जी
बताना चाहें तो।
सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चुभन को बहुत धन्यवाद, और नाम कितना सुंदर रखा कि चुभन,
जी मैम, चुभने वाले
जो
भी खाते हैं
जो
ना हम,
हाँ हाँ
इसीलिए।
नहीं जो, और जो बातें आपको ना प्रभावित करे, प्रभाव दें, वो भी चुभन का ही अर्थ है। तो
बिल्कुल मैम,
आपने मुझे प्रारंभिक जीवन के बारे में पूछा, तो मैं तो मेरा जन्म श्रीनगर कश्मीर में हुआ। वास्तव में मैं एक कश्मीर के एक जो गांव है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वो सीर जागीर,
जी
जिसके
जी
साथ जिसका टाउन जो है वो सूबा वो सोपोर पड़ता है, बीच में वो गांव है। तो
जी
वहां पर मेरा जन्म हुआ है। वो एक मतलब मेरे गांव जो है ना, मेरे माता पिता दोनों एक ही गांव के थे। उसके
जी
बाद व्यवसाय के कारणों से मेरे ताऊ जी, एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी उन दिनों, तो वो
जी जी
श्रीनगर आ गए अपने व्यवसाय के लिए। तो उस कारण हम वो लोग जो कश्मीर आए, मतलब श्रीनगर आए, और
जी
श्रीनगर में मेरा जन्म हुआ अपने माता पिता के तीसरे बच्चे के रूप में। तो ये मेरा जन्म, और वही मेरी फिर पढ़ाई भी शुरू हो गई। तो
जी
ये मेरे माता पिता है, ये मेरा जन्म स्थान है। तो अब आगे क्या बोलूं मैं, आगे आप पूछ
मैडम,
लीजिए क्या
पूछने में
बोलूं।
भी दर्द होता है वाकई में। आप लोगों को सब कुछ छोड़कर आना पड़ा, तो कुछ ना कुछ यादें, क्या बहुत सारी यादें होंगी
हाँ
जो
हाँ
दर्द
मुझे
देती
हाँ
होंगी।
हाँ अभी जैसे जैसे ही मैंने जो है ना, जिसे कहते हैं होश संभाला,
जी
हालांकि मेरा शैशव ठीक था, अच्छा था, कोई ये नहीं था, लेकिन जो जो राजनीतिक सच्चाइयां थी वहां की, जो सामाजिक सच्चाइयां थी,
जी
उन्होंने मुझे बहुत दुख देना शुरू किया। उनको मैंने समझना शुरू किया। मैं क्या, हर जो हिंदू बच्चा वहां हुआ करता था वो इसी त्रास से गुजरना शुरू हो जाता था। यानी कि एक सुरंग होती थी एक त्रास की, जिससे हर
जी
हिंदू बच्चे को गुजरना होता था। वो उस सुरंग में हमारा इतिहास भी था और वर्तमान भी था, और
जी
भविष्य भी कोई अच्छा ही नहीं था। तो वो स्मृतियों से भरा हुआ था, हमारे जनसंहार के, हमारे सांस्कृतिक जिनोसाइड की स्मृतियों से भरा हुआ था। जो हमने, जैसे बच्चा सुनता है अपने, वो कैसे जुड़ता है समय से।
जी
तो वास्तव में हर व्यक्ति समय का एक, समय की एक अगली लंबाई होता है।
बिल्कुल
जैसे हम रस्सी बनाते हैं, तो उसमें से जब घास खत्म होती है, अगला घास के तिनके लेकर उसको जोड़ते हैं, वो लंबाई, वो उसकी कंटिन्यूटी बनती है। तो
जी
उस कंटिन्यूटी को रखते हुए, बनाते हुए हमें ये पता चलता है कि जो पीछे हमारी कंटिन्यूटी थी वो क्या है, वो हमारा इतिहास होता है। और जो वो इतिहास था वो पिछले 1,000 साल से बहुत भयानक था, बल्कि रिसेंटली तो बहुत ही ज्यादा खराब था। जैसे आजादी थी, आजादी भी बस कहने की आजादी थी, कोई और जीवन जीने के तौर पर हमें कुछ लग नहीं रहा था कि हम लोग आजाद है। तो
जी
ये सब बातें जो है, इन सब बातों के को समझते हुए हमारे होश जो है आ गए, हमें होश संभाले। तो उसमें स्मृतियां क्या थी, कि स्मृतियां ये थी कि अभी अभी कबायलियों का लूट हुआ, मतलब पाकिस्तानी आए थे, सेना आई थी कबायलियों के वेश में, और उन्होंने बहुत बड़ा जिनोसाइड कर डाला था कश्मीरी हिंदुओं का। जो मेरी नानी का घर था वो भी नया, कुछ नई झोपड़ी बनी थी, उसने कहा कि पुरानी झोपड़ी को वो लोग आकर जला गए, सारा सामान, सब कुछ जो था, सब खेत खलिहान, उनमें क्या क्या तमाशे कहे गए थे, ये सारी कहानियां सुनने को मिली। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कैसा जीवन हमने शुरू किया, ये क्या हम पर क्या इसका असर पड़ा होगा। और उन्हीं जो हमारे आतताई थे, जो हमारे जो जिनोसाइड हम पर ढाने वाले थे, ये कहर ढाने वाले थे, उनके साथ सेक्युलरिज्म के साथ जीना था, उनके साथ बड़े प्यार और मोहब्बत से जीना था, और मोहब्बत तो हम ही, हमारे ही तरफ से था। ये प्रश्न, ये विडम्बनाएं बहुत भयानक थी, बहुत, ये तो मतलब ये तो कॉमन सेंस में नहीं आती थी मेरी,
बिल्कुल बिल्कुल
मैं अपने ही अब से बोलूंगी। और यही जो चीज है, यही इसी चीज का जो है बीज जो है मेरी समझ में पड़ता गया कि क्या जी रहे हम। अच्छा, नेचुरली तो राज्य प्रशासन स्टेट जो है वो जिम्मेदार होता है मनुष्यता का, लेकिन
जी
वो भी मुझे गैर जिम्मेदार, तो वहां पर उल्टा ही सब कुछ हो रहा था, और उल्टा जो हो रहा था वही मानना था, उसको सीधा मानना था,
जी
यानी कम्युनलिज्म को सेक्युलरिज्म मानना था, लोग जो लोकतंत्र नहीं था उसको लोकतंत्र मानना था,
जी
जो
जी
भेदभाव था उसको भेदभाव नहीं मानना था, उसको समता माननी थी। तो ये सब था। तो इसी के साथ साथ हम बड़े होते गए, फिर जब हम स्कूल में गए तो स्कूल में पढ़ाया जाता था दुश्मन का गौरव,
ओफो जी
शत्रु का गौरव, शत्रु की मनुष्यता। हद
जी
ये है कि शत्रु की मनुष्यता,
जी
और हमारा अपना जो जिस जिस संस्कृति से मैं थी उस
जी
संस्कृति की प्रताड़ना थी वहां, उस संस्कृति को छोटा दिखाना था वहां, और उसे बड़ा ही पिछड़ा और वो दिखाना था। और जो हिंसक संस्कृति थी वो बड़ी मानवीय थी,
जी
वो संस्कृति मानवीय थी। अब आप खुद सोच सकते हैं, जो एक सोचने वाला बच्चा हो, समझने वाला बच्चा हो और झेलने वाला बच्चा हो, वो कैसे समझेगा इन सब चीजों को, कैसे कितना डिप्रेशन में आएगा कि ये सब
बिल्कुल
मेरे 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 इस देश में हो क्या रहा, मेरे इस जन्म स्थान में हो क्या रहा है, ये कैसा है, जो हिंसा है वो अहिंसा कैसे है,
जी
जो जो धर्म है वो अधर्म कैसे है, जो असंस्कृति है अपसंस्कृति है वो संस्कृति कैसे है। तो आप समझ सकते हैं कितने कितने भयानक प्रश्नों ने मेरे अंदर जगह बना ली, जिनका मुझे कहीं उत्तर ही नहीं मिल रहा था। तो
जी
अब इन उत्तरों उन उन, उन, उन उन प्रश्नों को के उत्तरों की खोज मुझे स्वयं करनी थी,
जी
कैसे करनी थी, शायद वो मेरी जो संवित्ति, जो मेरा कॉन्शियसनेस है वो मुझे समझाता रहा। और उसके साथ मेरा एक बहुत सौभाग्य रहा, बल्कि उन सब बच्चों का सौभाग्य था कि जिस स्कूल में हम पढ़ते थे वो स्कूल ऐसा था जहां पर भारतीय संस्कृति का बहुत प्रचार था और
जी
पढ़ाई नंबर वन थी। और आपको मैं आश्चर्य की बात एक बताऊं कि उस स्कूल में मुसलमान भी, जो जो अच्छे पढ़े लिखे मुसलमान थे, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाना प्रेफर करते थे। क्यों? उन्हें पता था सच्ची शिक्षा यहाँ से मिलती है। तो
जी
वो मुझे एक बहुत बड़ा, एक ईश्वर ने मुझे एक वरदान दिया। मेरे माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ऐसे स्कूल में, मुझे मेरे भाई बहनों को सबको उस स्कूल में भेजा, ये हमारे भाग्य की बात थी। तो जहाँ इतने विरोधों के बावजूद, इतने विरोधाभास नहीं थे, विरोधाभास का मतलब विरोध का आभास ही नहीं, जो
जी
इतने विरोध थे, सच्चे विरोध थे, और
बिल्कुल
उन विरोधों को के प्रश्नों में के उत्तरों को ढूंढने का एक ऐसा चैनल था वो, जो मेरे बहुत काम आया,
जी
जिसको मैंने पूरे जीवन में फिर बाद में यूज किया, जिसने मेरे अंदर चिंतन को गहराया और तीव्र किया, तीक्ष्ण किया। तो
जी
वो मैं अपने आप स्कूल को, और आपको आश्चर्य होगा, स्कूल जो है उसका नाम था रूपा देवी शारदा पीठ, और
अच्छा
वो उसकी बगल में बहुत भव्य राम मंदिर था जो राजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। इतना
जी
भव्य, इतना सुंदर, इतना अद्भुत, जहाँ अब वहां जाते थे तो बड़ा जादुई लगता था, वह राम कृष्ण, राम सीता और लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्ति,
जी
बहुत अद्भुत। और आपको एक बात सच बता बताऊं, आज की डेट में वो मंदिर भी धूल दूषित है, वो स्कूल भी कहीं नहीं है,
जी
वो घर भी, जिस घर से मैं होते हुए फिर उस स्कूल में जाती थी, वो घर भी कहीं नहीं है। ये
त्रास
कैसी विडम, कैसा त्रास है, ये कितना भयानक है,
है और
सब तो
मैम
जल
किसी
गया।
नहीं रहा, ये सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय है। क्योंकि हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम अपने बड़ों की तरफ देखते हैं, चाहे घर होता है, परिवार होता है, फिर हम बड़े होते हैं देश के जो प्रशासन होता है, जो उसके हेड होते हैं, उनकी तरफ देखते हैं। तो आप लोग किसकी तरफ देखो, कितनी मजबूरी थी बचपन। जी
वही तो मतलब आप बहुत सही कहा आपने कि जैसे प्रशासन होता है, लेकिन
जी
प्रशासन के तरफ से मैंने कहा ना वो विरोध की बातें थी, मतलब
जी जी
डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, यानी सेकुलरिज्म, वहां आपको सेकुलरिज्म मानना है जबकि
दूसरे
है बड़ा, जबकि
जी
है वहां जिहाद, है वहां कम्युनलिज्म, उसको
बिल्कुल
आपको सेकुलरिज्म कहना है और
जी
खुद को आपको खुद को कम्युनल मानना है। क्यों? क्योंकि आप हिंदू हो, आप खुद को
जी
कम्युनल मान ही लो, मान के ही चलो, तभी आपका रास्ता ठीक रहेगा। तो जो कि फॉलो किया है, मुझे लगता है पूरे भारत में वो फॉलो किया गया है।
जी बिल्कुल
ये जो जो सारी असहजताएं हैं, जो जो अप्राकृतिक चीजें हैं, उनको प्राकृतिक करके माना गया। और बड़े फिर मैंने जब थोड़ा थोड़ा बड़ी हो गई तो मैंने देखा कि दुहाइयां दे रहे हैं यहाँ। अरे हमारे पास संविधान है, हमारे
जी
पास लोकतंत्र है, मैंने देखा वो सब बेकार है, वो तो है ही नहीं। वो
जी
सब कुछ जो कुछ भी है, चाहे संविधान है नहीं, आप मुझे कहेंगे कि देखिए संविधान के बारे में मत बोलिए, मैं क्यों ना बोलूं बताइए। ये
बिल्कुल
संविधान मेरे किसी काम का नहीं आया। आज सुबह भी जब मैं किचन में थी, मेरे पति देव ने मुझे बताया कि कैसे कश्मीरी पंडितों के कई बहुत लोग जो है घर है अभी बेचारे पुराने टेंटों में रह रहे, उनको कहीं
जी
मिल नहीं रहा रह मिलता नहीं है कहीं कोई, जैसे मतलब टू रूम सेट बनाए गए हैं, उनमें मुसलमानों को एडजस्ट किया गया है, लेकिन वो हिंदू वहीं सड़ रहे हैं। और कहते हैं कि अभी जो आंधी आई थी उनसे उनके सारे वो जो बेचारों के वो जो छत वत हट गए।
जी
हेलो,
जी हाँ जी
आवाज
मैं
आ रही ना मेरी?
हाँ जी बीच में जरा सी गई थी। आपने बताया कि मुसलमानों को उन टू रूम सेट में
हाँ हाँ
रखा।
जी, बिल्कुल आप आइए। लेकिन उन जो जो सड़ रहे हैं नगरोटा में, पांच घर हिंदुओं के, मैंने पांच अभी सुना, मेरे पतिदेव तो वो बोल रहे थे कि अरे कई, मैंने जब मुझे मेरे एकदम भरसक आंसू आए, रुके नहीं मेरे आंसू, तो
जी
बोले तुम रो क्यों रही हो, ये इतने तो बहुत घर है। मैंने कहा फिर हमारा फर्ज हम क्या कर, जब हम किसी के नहीं है फिर कम से कम आपस में आप एक दूसरे को तो हो जाओ भाई। ये हमारी हालत आज की डेट में भी है, तो
जी
कितनी खराब, कितनी खतरनाक हालत है, कोई सुनने को नहीं है। कोई सिर्फ बोलते हैं कि भाई कश्मीरी, ऐसे अफवाहें उड़ाई जाती है कश्मीरी पंडितों को ये मिलता है वो, एक तो वो, दूसरा जो अभी अभी जो गृह मंत्री ने कुछ महीनों पहले, मुझे लगता है फरवरी की बात है, जब उन्होंने सरे आम संसद में हमारी संख्या घटाई और हमारा हमको इतना रिलीफ जो कि मिलता ही नहीं है भावना जी, इतना रिलीफ
जी
हमें नहीं, 13,000 नहीं मिलता है। कितना
जी
मिलता है? एक जने को 2,500 रुपये मिलते हैं। अब
ओ
जिस जिस घर में उतने बंदे हों जितने की 13,000 का बने गए, वो सीलिंग कर दी गई, और उससे ज्यादा हो तो नहीं मिलेगा। तो मैं उनकी बात बता रही थी कि उनके छत उड़ गए, वो बेचारे, और कहते हैं उनके उनकी जो कमरों में उनके जो वो जो झुग्गियां हैं उनमें सांप और वो आ रहे हैं, बिच्छू, छोटे छोटे बच्चे हैं।
जी
कहाँ है शासन, कहाँ है प्रशासन? सिर्फ लगे हुए हैं जिहादियों को कुछ करने में, सिर्फ लगे हुए। ये जो 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 बचपन में मैंने देखा, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं पड़ा कि जो जिहाद है वो सेक्युलरिज्म है, जो हिंदू होना है वो कम्युनल होना है। ये बातें चल रही है, बातें ये ग्राउंड पे यही हो रहा है। तो ये
जी
मैंने इसलिए कहा कि आपने स्मृतियों की बात करी, और स्मृतियों की एक पूरी लाइन अब जो 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 कड़ी है वो अभी चल रही है, कहीं वो टूट नहीं रही कि वो स्मृति विशेष हो और आज उसका मतलब जो उसकी जो है निरंतरता नहीं हो, निरंतर है वो ऐसा चल रहा है। तो ये जो है मैंने संक्षिप्त में आपको ये बताया, तो इसमें फिर मैंने ये शिक्षा ली। तो अब मुझे लगता है मैं ज्यादा बोलती जा रही हूँ, और ये बीच में क्यों
मैम
करता है?
एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगी कि आप लोगों की बात पूरे देश तक जा ही नहीं पाई। अब उसकी जो भी वजह रही हो, या तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना नहीं था, एक ही चैनल था, मेरे ख्याल से सैटेलाइट चैनल नहीं थे और सोशल मीडिया तो था ही नहीं। अब अभी मैं देखती हूँ कि ये अफगानिस्तान का हो रहा है तो इतना ज्यादा शोर मच रहा है, वहां पर अमानवीयता की हदें हो गई, जबकि मुझे लगता है कि देखा जाए तो आप लोगों के साथ कश्मीर, अब मैं आप लोगों से बात करती हूँ और थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ आप लोगों के साथ जो कुछ हुआ वहां पर, तो
जी
ऐसा लगता है
जी
कि शायद ये सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है। अगर हम
बहुत
1947
बड़ी, बहुत
वाले, हाँ
बहुत बड़ी।
जी, भारत पाक विवाद को पढ़ते
जिनोसाइड की
हैं उसमें,
क्लासिक एग्जाम्पल अगर है वो कश्मीरी हिंदू का जिनोसाइड है
और
जो
क्योंकि
90
भारत
में
पाक
होना।
आतंक को हम इससे नहीं जोड़ सकते क्योंकि वो अलग परिस्थितियां
हाँ
थी,
हाँ वो अलग
है
अलग
ना।
परिस्थितियां
हाँ जी, क्योंकि देश का बंटवारा हुआ था, तो उनसे ना जोड़िए, अगर उनको छोड़ दीजिए तो ये शायद सदी की सबसे भयानक घटना है।
थी। भयानकतम भयानकतम
हाँ जी, और
भयानकतम।
जी बिल्कुल,
ये
और
भारत के स्वतंत्र भारत, अगर तथाकथित स्वतंत्र भारत का सबसे सबसे काला और क्रूरतम अध्याय अगर है तो वो
जी
है कश्मीरी हिंदुओं का जिनोसाइड।
जी बिल्कुल
और इसी लिए देखिए आपने कहा ना कि आज तो फिर भी सोशल मीडिया है, वो है, ये है। भावना जी, आज सोशल मीडिया है तब भी जैसे जिन लोगों के बारे में सुबह मुझे पता चला,
जी
जिनके पास खाने को नहीं है, उनका जो वो जब छत उड़ गई, लड़का उसका वो उनका वो बेचारा उसके ठीक करने के लिए उठा और पता नहीं पेड़ से गिरा कर तो उसकी हड्डियां वड़ियां टूट गई। बोलिए उस परिवार की हालत क्या होगी। और
जी
कोई सुध लेने को नहीं है, कोई पूछने को नहीं है, तो आज के सोशल मीडिया के दौर में भी ऐसा
क्या हो,
क्यों है? यानी कि ये जो बरसक जो कोशिश की जा रही है कि हमको ब्लैकआउट रखा जाए, हमको ब्लैकआउट किया जाए, और इसमें बीजेपी कहीं कहीं कोई अपवाद नहीं है। भावना जी,
जी
बीजेपी उसमें भी वो उसी तरह से काम कर रही है जिस तरह से कांग्रेस कर रही थी, कहीं
जी
कुछ नहीं है। हाँ, 370 उड़ गया, लोगों को ये ऊपर ऊपर से पता चला जी 370 भी जी उठ गया, लेकिन अगर उठ गया उसके पास जो काम करने थे भारत सरकार को वहां,
जी
वो करने में क्यों असफल हो रहे हैं? अभी तक वो रिझा ही रहे हैं उनको, अभी तक वो उनसे उनकी चिरौरियां कर रहे हैं कि तुम बस एक्सेप्ट करो कि 370 हट गया। उनको मार मार के भारतीय बनाया जा रहा है जो वो कभी नहीं होंगे, और जितना उनको प्यार से वो भारतीय बनाने की कोशिश करेंगे भावना जी, उतना ही
जी
वो सिर चढ़ेंगे। भारत
बिल्कुल
के संसाधनों से वो भारत को खत्म करने के काम जानते हैं, उसमें
जी
सफलता का की गारंटी भी उनको पता चल रही है। क्यों? क्योंकि भारत का जो शासन है, जो संविधान है, जो कुछ भी है, वो सब लिजलिजा है, वो
बिल्कुल
भुरभुरा है, उसमें कोई दम नहीं। महबूबा मुफ्ती उधर, तालिबान उधर आ गए हैं अफगान में, और महबूबा मुफ्ती ने तालिबानों के पैरेलल वहां मोर्चा लिया है कि देखो तालिबान आ गए, अब सुधर जाओ, ऐसे बोल दे। अरे आप इस महबूबा मुफ्ती का काम क्यों नहीं तमाम कर रहे? रखो इसको अंधेरी कोठरी में।
जी बिल्कुल
हु द हेल शी इज इफ शी इज हर्टिंग द नेशन? नहीं, क्या मैं गलत कह रही हूँ?
नहीं नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
लेकिन उसको उल्टा उसको मीडिया की लाइमलाइट मिल रही है, उल्टा उसकी बातें उसके बयान हाईलाइट हो रहे हैं। और अगर हम बोलते हैं कि भाई कम से कम हमको कम से कम गृह मंत्री को ये नहीं, संसद में गलत बयानी नहीं करनी चाहिए थी कश्मीरी पंडितों के बारे में,
जी
तो उसके जो कि हमारा सच्चा बयान है और हमको इतना पीड़ित किया है गृह मंत्री ने, इस शासन ने, उस पे लोग हम पे मार रहे मारे हम मारे रहे मारे जा रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा? गृह मंत्री ने किया कहा तो क्या हो गया? अरे गृह मंत्री ने कहा तो बहुत कुछ हो गया ना।
बिल्कुल
अगर मैं कहती हूं कि भाई गृह मंत्री ने गलत कहा, जो कि सचमुच गलत कहा, तो उससे आपको लगता है कि बहुत कुछ हो गया, तूफान हो गया। लेकिन गृह मंत्री ने सरेआम पूरे दुनिया को सुनाया संसद में, संसद की जय संसद जिसे आप मंदिर कहते हैं, वहां जाके इतना भयानक झूठ बोला, उस एक कम्युनिटी के बारे में, उस एक भारत प्रेमी समुदाय के बारे में जो जनसंहार का, जो जिनोसाइड का पहले ही शिकार है
जी।
क्या आपको पाप बोध नहीं है? आप जाके संसद में जाने से पहले उस वहां माथा टेकते हैं, आप वहां पर जो दंडवत करते हैं, तो हम तो बहुत ही प्रसन्न हो गए भाई, ये अब ये सचमुच शुद्ध हो गया संसद, अब यहाँ पर एक भी बात झूठी नहीं बोली जाएगी। लेकिन वहीं पर आप हमारे आंकड़े खाम को खत्म कर रहे हैं, हमारी लाखों की तादाद को 6,500 तक पहुंचा रहे हैं, हमारे 2,500 रिलीफ को 13,500 बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अब हम इसके खिलाफ बोलेंगे तो आपके ही चेले चपाटे बोलेंगे, गृह मंत्री ने कहा झूठ तो कहा, कोई बात नहीं, जाके कहीं मरो, सहो इसको। और दूसरी बात, ये जो सारा झूठ कह के गृह मंत्री, क्या वो अपील नहीं कर रहा, वो कश्मीरी जिहादियों को ये चैन और सुख नहीं दे रहा कि देखो इन कश्मीरियों को जो आपसे मिटे नहीं, जो किसी से मिटे नहीं, उनको मैं कागजों में मिटा डालूंगा
जी।
वो लाखों हैं, मैं हजारों में कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं जिहादियों मैं तुम्हारे साथ हूँ
जी।
जिहादियों आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ, मैं अमित शाह तुम्हारे साथ हूँ।
और ऐसा लेकिन क्यों हो रहा है मैम, ये नहीं समझ आता, वही तुष्टीकरण की नीति जो हमारी
तुष्टि हिंदू, अब बताइए, तथाकथित हिंदुत्व वाला राज है इस समय, और हिंदू की क्या कदर है, हिंदू की जान की कोई कदर, हिंदू है ही नहीं कुछ। आप तो गजवाए हिंद का वो करते हैं, उसको उसको योगदान, उसको सहूलियत दे रहे हैं, उसको एम्पावर कर रहे हैं, उसका पथ प्रशस्त कर रहे हैं। मुझे ये कहने में कोई चूक ये नहीं है, मैं एक लेखक हूं और मेरा युद्ध लेखन के जरिए ही चलेगा, और लेखक होने के नाते मेरा पूरा दायित्व बनता है मैं एक एक बात कह दूं सच्ची।
बिल्कुल,
आप मुझे क्या करोगे भैया, मैं तो जिनोसाइड की शिकार हूँ, उठा के मुझे रेल में डालो, मेरे मुझे फांसी में चढ़ा दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं अंत तक सच हूँ। क्योंकि मैं भावना जी यहाँ आपको कहना चाहती हूँ कि आप, हमने तो अपने, मैंने तो अपने जीवन वगैरह से शुरू किया और लेखन की बात करनी थी मुझे, तो मैं ही ये बात अब आगे बढ़ाती हूँ इस तरह से कि जैसे मैं लेखन करती थी कश्मीर में
जी,
और लेखन गंभीर लेखन मेरा वही शुरू हुआ था
जी,
कश्मीर
जी।
में ही, और जब ये जो कुछ भी था, जो भी सच्चाइयां थी उसको बोलने में हमें भी परहेज ही कर रहे थे, क्योंकि चलो जीते तो थे वहां
जी,
डर तो था वहां, जैसे तैसे हमने अपनी टेक्निक बनाई थी कि कैसे हम इनमें रहेंगे, बहुत कुछ सह के चुप रह के यही खुश रहे इस तरह से। लेकिन वो भी मतलब उन्होंने ये कहा कि तुम लोग इतना सहोगे हमें ये भी पसंद नहीं
जी।
तुम्हारे इतने सद्गुण हैं, हम इन सद्गुणों के लिए भी तुमको खत्म करेंगे, मार डालेंगे। तो अल्टीमेटली जो हुआ तो पूरा वो जो कहते पृथ्वी पलट गई, जिनोसाइड हुआ और हमें वहां से निकाला गया, मार मार के निकाला गया बहुत लोग। जैसे मैं भी, मैं पहली मार्च को आई हूँ वहां से, 19 जनवरी को नहीं, क्योंकि मैंने सोचा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा
जी।
लेकिन जब अंततः ऐसी स्थिति, जो मैंने अपनी कहानियों में लिखा है
जी,
तो वो सारा किस्सा तो वो अपने साहित्य में लिखा है, फिर रहा नहीं चाह रहा कि मुझे हमें निकलना ही पड़ा। और उसके बाद जब मैंने सोचा, जब मेरे पास कुछ भी ना था, तब मेरे पास ये अनुभव थे, ये स्मृतियां थी, और ये शरीर था, इसके अंदर बुद्धि थी, उसके अंदर आत्मा थी, मेरी इंद्रियां थी, मैंने सोचा मेरे पास तो बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ा खजाना है, और इसको, तब मैंने सोचा कि मैं जीवित क्यों बच गई, जीवित बच गई क्यों, जितने भी हम लोगों में से जीवित बच गए, मैंने सोचा वो सब इसलिए बच गए कि आप बाहर आओ और लड़ो। कैसे लड़ो? जो भी तुम्हारे पास आयुध है उससे लड़ो
जी।
और मेरे पास, मैंने सोचा लेखन मेरा आयुध है, कलम मेरी आयुध है,
और शुरू हो जाओ। और उस समय मैंने सोचा कि बस अब एक बात भी ऐसी नहीं कहनी है जो कि सच नहीं है, जो जो बिल्कुल जो विरोध है
जी जी
जो जो आपके लोकतंत्र की, आपके तथाकथित लोकतंत्र की परिभाषा के अंदर वो नहीं आता है, मैं क्या करूं, यह तुम्हारा सिरदर्द है, आप उसको ब्लैकआउट करेंगे, करो जी जहां तक मर्जी करो, लेकिन मुझे जिसने बचाया, मेरी पूरी आस्था, मेरा पूरा संवाद उसके साथ है, वो कुछ करेगा, वो तुम्हारा भी चाह रहा है। देखो तुम रहस्य को मानो ना मानो, रहस्य तो है हर एक का जीवन, नहीं तो जी आया कब, आया आता कैसे यहाँ इस संसार में, बना रहता है
बिल्कुल,
और फिर जाता नहीं, मरता नहीं, जहां तक जब तक मरण है जीवन का तब तक रहस्य है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते इस रहस्य का। तो ये रहस्य किसके पास है, जिसके पास है उस सबसे, उसी से हम सब संबोधित है
बिल्कुल,
कि मुझे जो सच दिखता है, मुझे जो ये नंगा सच मुझे कहना है। और तब मैंने लिटरेचर इन एग्जाइल शुरू किया लिखना। और आपको क्या बताऊं मैं, इससे पहले तो अग्निशेखर का जो कविता संग्रह था किसी भी समय, वो तो उन्होंने कश्मीर में ही लिखा था, उसमें भी प्रमोनिशन की कविताएं थी
जी, जी।
लेकिन जो शुद्ध शुद्ध विस्थापन जिसे कहते हैं एग्जाइल का लिटरेचर, वो मेरी डायरी से ही शुरू हुआ।
अच्छा,
समय के बाद, और उसके बाद मैंने ठीक से समझने की हर पल मैंने लगाया समझने में कि क्या जी रहे हम, क्या देश है ये, क्या है वो सारी व्यवस्थाएं, और किसका गुणगान है ये यहाँ हो रहा है। और तब मैंने देखा कि पार्टीशन अभी अभी जो हुआ है, और पार्टीशन में जो लोग खतरनाक, बहुत बड़ा जिनोसाइड तो वो था
जी जी,
वो तो इतना भयानक वैश्विक, लेकिन अब उसमें ये जैसे आप ही ने कहा कि चलो दो एक देश जो है खंडित हुआ था दो, उसमें दो मतलब वो देश ही चला गया था, वो भूखंड ही आपका चला गया
जी।
मगर एक बात है, जिन्होंने वो भूखंड को तोड़ा और उस जिनोसाइड का कारण बने वो नेता, उन नेताओं को किसने वो इजाजत दी थी, किसने वो उनको वो दिया था कि भाई आप ऐसा करो
जी,
लोगों को अपने घरों से आप आदेश करो कि भाई ठीक है ये जी हम, ये किसके आदेश से तुमने दिया था, क्या उन लोगों से आपने आदेश लिया था
जी।
तो ये जो सवाल है ये कभी किसी ने किए ही नहीं। उसके बाद जो पार्टीशन को लेकर थोड़ा बहुत छुटपुट कथाएं आ गई, वो सेक्युलरिज्म, वो छद्म सेक्युलरिज्म से ऐसे लैस है भावना जी, मुझे शर्म आती है। बड़ा अमृता प्रीतम अमृता प्रीतम, वो तो लव जहाद की बातें कहती है, लव जहाद की बातें लिखी है उसने बाद में
जी, पिंजर उनका इतना प्रसिद्ध हुआ।
अरे बिल्कुल, और नहीं त्रासदी कहो और उसको लव जहाद में, उसको फिर उसने फिर वो वही बात कहो आप कि मुसलमान सेक्युलर है और हिंदू कम्युनल है। पिंजर को गोली मारो आप, उसका वो जो सारे एक्ट उसके सारे, अच्छा दूसरा वो जो यशपाल है
जी,
आपका बीएसएम सहनी
जी,
ये सब ने इसमें वो भगार लगाई है सेक्युलरिज्म की। भगार क्या, पूरा मसाला वही है, जो सच्चाई है, सो घटनाओं का जो त्रास है, जो मैंने सुना है महिलाओं से
जी जी,
जो बिल्कुल ग्रास रूट की महिलाएं, जिनका साहित्य से कोई लेना देना नहीं, जिनका राजनीति से कोई लेना देना, उनके अंदर एक स्त्री को मैंने प्रश्न करते सुना, उसने मुझसे प्रश्न किया, जो मेरा आगामी उपन्यास है भावना जी, मूर्ति भंजन नाम से, प्रभात प्रकाशन से आ रहा है, उसमें ये प्रश्न मैंने अच्छे तरह से उठाया है, हालांकि मैं इसे थोड़ा एडिट करवाया गया, लेकिन सच में वो शायद एडिटिंग के लायक नहीं था, उसे एडिट करना नहीं चाहिए था। तो उस खैर मैंने उसमें फिर मैंने छोड़ा, चलो उपन्यास कहीं ज्यादा लंबा ना हो जाए, लेकिन वहां मुझे एक ये मेरे अनुभव में आया है। तो आप अब जब आप अगर आप उपन्यास पढ़ेंगी, मुझे लगता है पढ़ना चाहिए, तो वो मुझसे पूछती है मुझे ये बताइए, इन लोगों ने नेहरू और गांधी को किसने इजाजत दी थी कि तुम इन लोगों को तबाह करो। बोलती है मेरी माँ
हमारे साथ ही निकली भागने के लिए, लेकिन फिर मिली ही नहीं, और वो छोटी सी बच्ची थी। ये बताइए ना, ये कितना भयानक त्रास है, जिसने कुछ किया ही नहीं उसी को कल को बोलते हो आप चलो जी। और कभी कभी ये चीजें सुन के मुझे भय लगता है कि कल को कहीं बोले भाई चलो उठो जी, ये जी पाकिस्तान जी वो हो गया, ये जी ये हो गया। किसने बोला जी जो फलाना पंत्री है उसने इजाजत निकाली, ये जो मतलब ये आज्ञा कर दी।
ये आपने बहुत सही बात कही मैम कि उस समय भी इतने
मतलब आपके आप राजनीतिक किन किन कैसी राजनीति में आप सुरक्षित है,
कोई पूछ नहीं सकता कि ऐसा
कैसे, कोई पूछ ही नहीं सकता, किसी को पूछना नहीं चाहिए। आपकी किताब छपेगी नहीं, मैं आपके मतलब मैंने दर्दपुर में लिखा सच
जी,
और लोगों को उल्टियां आने लगी। किन किन लोगों को, जो नाम से हिंदू है
जी
लेकिन काम से वो या तो क्या बताऊं मैं, पशु है, काम से वो क्या चीज है, भारतीय तो है ही नहीं। इस तरह से उन्होंने हिंदू जैसे अपने पे वो करते हैं, अपना जीवन जीते हैं, अपना साहित्य लिखते हैं, अपने साहित्यकारों पर अपना अपनी धौंस रखते हैं, तो उससे वो ये उससे संदेश ही देते हैं कि हिंदू मत हो, नाम भले हिंदू का रखो मगर काम हिंदू वाले मत करो
जी।
अरे राम, हिंदू तो पूरी मानवता का प्रतीक है, हिंदू तो पूरी मानवता का संरक्षण है, संरक्षक है।
नहीं मैम, हिंदू की परिभाषा ये हो गई है ना कि वो त्याग करे, वो इन सब चीजों को ना माने, वो अपने धर्म को छोड़कर दूसरों का सम्मान करे।
मैं वही तो कह रही हूँ, वही तो कह रही हूँ ना, वही तो, वो तो वही तो अपने जो अपने कामों से अपने लेखन से वही तो हिंदू को मतलब वो करना। अभी अरे क्या क्या बताऊं मैं, किस किस की बात बताऊं मैं
जी।
अरे लेखक जो थे इतनी भयानक बातें क्या क्या बताऊं फिर मुझे जी। कोई बहुत लोग बोलते हैं मुझे तो किसी एक बड़ी लेखिका ने बोला कि तुम्हारे अरे तुम्हें तुम्हारी बस में चले तो तुम हम सबको मार डालो। अरे कहा मारा मैंने, मुझे मारा गया, तुमने मुझे मारा
जी।
तुमने मुझे मारा मेरी उपेक्षा करके, तुमने मुझे मारा मेरी शत्रु का साथ दे करके, भले तेरा नाम हिंदू हो, तू किस काम की लेखिका, तू किस काम का लेखक, तू तो इस देश का गद्दार है बहुत बड़ा, और इस देश का, इस देश की संस्कृति का, इस देश के क्षेत्रीय संरक्षण का अगर कोई कहीं पर कोई वकालत करता है तो वो विस्थापित साहित्य, वो निर्वासन साहित्य करता है जो कश्मीर से निकला है, जो कश्मीर से लिखा जा रहा है
जी।
तो ये जो जब हमारा निर्वासन हुआ तब जाके मुझे ये समझ में आया कि हाउ आई हैव टू स्टार्ट नाउ अफ्रेश विद माई लिटरेचर। तो उसके बाद मैंने दर्दपुर लिखा, और दर्दपुर को कितना परेशान किया गया मैं क्या बताऊं, उसको डंप किया गया, उसको उस वर्ष जिस वर्ष वो मुझे सबसे ज्यादा ज्ञानपीठ की रॉयल्टी उस वर्ष मिली उस, और मतलब ये बोलने में भी वो चूके नहीं, मतलब कहीं ना कहीं कानून में मेरे मेरे और मेरे पतिदेव के डाला कि भाई ये तो ये किताब तो साहित्य अकेडमी उस साल का रिजर्व करती थी
जी, कर, जी।
मतलब मिलना ही था लेकिन नहीं ना मिलता। मैंने भी कहा हाँ नहीं ना मिलता, क्यों, क्योंकि मैं हिंदू हूं ना और हिंदू के रूप में ही जी रही हूँ, सच्चे भारतीय के रूप में जी रही हूँ
जी,
सच्ची भारतीय हूँ, भारतीय की भारतीय संस्कृति की संरक्षण को की वकालत करती हूँ। हिंदू होने को पाप या उज्जड़ या गवार या कम्युनल नहीं मानती हूँ, और मुसलमान को जिहादी आतंकवादी कम्युनल कट्टर और देशद्रोही ये सब मानती हूँ। क्यों, क्योंकि वो मेरे सामने प्रूव हुआ, और मेरे सामने प्रूव हुआ उससे पहले भी 1000 साल से प्रूव होता रहा है।
बिल्कुल,
मेरी मेरी नानी ने भी वही कहानियां कही, मेरी माँ ने वही कहानियां कही, मेरे ताऊ ने भी वही कहानियां कही, मेरे गांव वालों ने मुझे वही कहानियां कही, और मैंने खुद भी देखा, मैंने खुद झेला, मैंने स्कूल में जो कि जबकि हिंदुओं का स्कूल था वहां भी मुसलमान लड़कियां हमें प्रताड़ित करती थी
जी।
मैंने दफ्तर में देखा, मैंने शिक्षा के क्षेत्र हर क्षेत्र, मैंने नौकरी के संबंध में देखा। तो मुझे क्या बोल रहोगे तुम भैया, तुम मुझे कुछ भी ना दो,
मुझे, मैं एक लंगोट में रहूंगी लेकिन मैं सच कहूँ, मैं आपकी गोली खाऊंगी, मैं क्यों मैं सच कहूंगी,
बिल्कुल
क्योंकि मुझे पता है मरना तो एक दिन होता है हर एक को। तुम जो इतना कुछ कर रहे हो सालो, तुम भी मरोगे, मगर मैं सच बोल के मरूंगी कम से कम।
ऐसा नहीं लगता मैम आपको कि जैसे कश्मीर को पूरे देश से काट ही दिया गया है या शायद हम लोगों ने काट दिया है?
बिल्कुल काट दिया गया है। और ऐसा मतलब ये एक 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 एक, एक मनोवैज्ञानिक इस तरह का बनाया गया था, एक समझ बनाई गई थी कि कश्मीर तो है ही नहीं हमारा, ये तो वास्तव में पाकिस्तान का ही हिस्सा है, जिस पे सचमुच ये वामपंथियों और सेक्युलरों का ये मतलब इस फीलिंग जो है आई लाई गई थी आम पब्लिक में भी। लेकिन इस मामले में बीजेपी ने ये बहुत अच्छा काम किया कि 370 हटाया, 35 से हटाया, इससे ये तय हो गया कम से कम। और उसके उसके अलावा भी जो जागरूक हो गया पूरे भारत में, जो अभी जो कुछ अनुभव अनुभूतियां हो रही है जिहाद को लेकर, आंखें खोल रहे हैं लोग, तो ये उससे अब समझ में आया कि नहीं, अरे अरे कश्मीर को समझो, कश्मीर क्या है भावना जी, कश्मीर स्रोत है भारतीयता का, भारतीयता का जो आगमन उद्गमन आविर्भाव वो कश्मीर से हुआ है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आइजक टेलर कह रहा है, ये बहुत सारे और दो विद्वान है जिनका मैं नाम यहाँ बोल रही हूँ, मेरे सामने भी नहीं है, वो कह रहे हैं कि वहां से आकर ये नीचे को ये संस्कृति बह गई है, संस्कृति और मैदानों में फैली है अप टू द ओशन, और इसका फैलाव विस्तार चीन अफगानिस्तान ये सारे ईरान इराक ये सारा जिसे आज मिडिल ईस्ट वगैरह सब कहते हैं, तो ये मानवता का भारतीय संस्कृति का, अगर इस पूरे विश्व में संस्कृति है कोई, जो संस्कृति शब्द के अंतर्गत अगर कुछ है आता है वो भारतीयता ही आती है। इस्लामी जो कुछ भी है कल्चर कहो मुझे कोई आपत्ति, लेकिन संस्कृति नहीं हो सकती वो। संस्कृत होना, संस्कृति होना इसके एक मानव का बहुत सुंदर होना, लगभग लगभग ईश्वर के समकक्ष होना, मानवता के लिए बड़ा हितकर होना, और उसमें जो डिस्टर्बेंसेस आती आई आती रही है उनको परमेश्वर स्वयं आकर हटाता रहा है, चाहे वो कंस के रूप में आया हो, चाहे वो रावण के रूप में आया, चाहे वो कैसे भी ऐसे अनगिनत जो है तत्व आए हैं इस हमारे पास हिस्ट्री है, और हमें उसे पढ़ाया नहीं जाता है उस पूरी समझदारी के साथ, जिस समझदारी के साथ हमें उसे समझना चाहिए कि वास्तव में रावण क्या रिप्रेजेंट करता है, कंस क्या रिप्रेजेंट करता है, और जो इतने राक्षस और राक्षसियां वो सब क्या रिप्रेजेंट करते, और जो उनके प्रति किया गया उसका क्या अर्थ है, उनमें क्या संदेश है। संदेश यह है कि उनको खत्म करो, उनको नष्ट करो। महबूबा मुफ्ती तुमको धमकाते हो और उसे राजनीति बोलते हो और उसको आप स्पेस देते हो,
जी
उनको तो सीधे संदेश है उठो और इन दुष्टों को ध्वंस करो, खत्म करो, और इस तरह से इनको बचाकर आप अमानवीयता बचाते हैं और मानवीयता और मानव संस्कृति को खत्म कर रहे हो। दिस शुड बी सीधा सीधा एक नैरेटिव नहीं बनाया जा पाता है, पा रहा है। अटैक इन पर होता है लेकिन मतलब झूठे नैरेटिव से, घड़े हुए नैरेटिव से। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, तालिबान और आरएसएस,
जी जी
आरएसएस कितना कुछ कहती है भैया, वो कहती है कि आप 50 साल तो आप छोड़ ही दो देवी देवताओं की पूजा करना, तो ठीक है वो तो सूट करता है ना जिहाद को,
बिल्कुल
आप हमें दूर कर रहे हो हमारे उससे जो 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 हमें करना चाहिए, और ये क्यों कर रहे हो, ये आप इसलिए कर रहे हो कि आप सेक्युलर, आपको सेक्युलर होने का सर्टिफिकेट मिले जिहादियों से, और जितना आप उनके कदमों में गिर पड़ोगे आरएसएस यो उतना ही वो आपको जल्लाद, आपको तालिबानी, आपको पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, जबकि वो कुछ तुम हो ही नहीं कुछ। उल्टा इसमें कोई शक नहीं, जब कोई आपदाएं आती है तो आप पहले आते हो, सेवा करते हो, और मुसलमानों की सेवा सबसे ज्यादा करते हो
जी,
ताकि आप सेक्युलर दिखो। तो ये जिनको ये जिनके दिमाग में जिनके मगजू में ये बात आती है नहीं, अरे आप संगठित कर रहे हो, आप कंसोलिडेट कर रहे हो, जिहादी में अपना ताकत झोंक रहे हो, वही झोंको आप हिंदू को संगठित कंसोलिडेट करो, हिंदू को बिखरा रहे हो। अब जब लोग देख रहे हैं कि आरएसएस ये कर रही है, सेकुलर काम कर रही है, जिहादी काम कर रही है, जिहादी पोटलियां बांट रही है, तो हिंदू क्या करे, वो तो टूटेगा ही
जी।
वो तो सोचे, वो तो उसकी तो बेचारे की कमर टूटी जब यात्रा इस आरएसएस पे, तो हमारा बड़ा वो था, ये तो ये काम कर रही है, तो हम तो गए बाढ़ में, फिर हमें भी यही करना, हमें तो अभी ये ऐसा वातावरण उल्टा बना रहे इस देश में कि लोग उठ के इस्लाम को कबूल करें, जबकि यही बना सकते थे वैसा वातावरण कि लोग वापस इस देश की मूल संस्कृति में आ जाए जिसके वो वास्तव में है, जिसका वो कहते हैं उनके मुंह में जाग आती है, भाई ये जो मुसलमान है ये इनका डीएनए वही है जो हमारे डीएनए, तो उसी समय बदल जाता है जब आप धर्म परिवर्तन करते हो, जब आप गोमांस खाते हो, जब आप कलमा पढ़ते हो। अब मुझे बताइए आज का कल का हिंदू जिसने जिसने मुसलमान वो अपनाया तो वो हिंसक जिहादी कैसे बना, उसका फिर तो इसका मतलब डीएनए उसका बदल गया
जी।
हिंदू हिंदू होकर जब वो हिंदू था तो उसने क्यों नहीं इतनी हिंसा सोची दिमाग में, क्योंकि डीएनए उसका शांत था
जी।
और तुम बकवास कर रहे हो जब सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर मोहन भागवत तक कि भाई हमारा डीएनए एक ही है, क्या हास्यास्पद नैरेटिव करते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है, जिनके जो ना इसके ना इनके पीछे कोई इनका चिंतन होता है, ना इनके पीछे ये सोच होती है कि इससे दूर तक मैसेज क्या जाएगा, और इनको ये भी पता होता है शायद हम कुछ सोच कर दे रहे हैं और आम आदमी के मन में कोई उनके अंदर कोई सोच ही नहीं है।
ये आपने बड़ी बात कही मैम, चिंतन की बहुत कमी है। और दूसरी क्या बात है कि हमें ना हम झूठे दर्प में जीते हैं, मतलब हमें अपनी सभ्यता पर संस्कृति पर बड़ा गर्व है कि इसका कभी भी नाश नहीं हो सकता, हम कुछ भी करें, लेकिन आज हम एक बार सोच
हाँ यही ये भी बहुत गलत बातें करी, अरे हमारा कुछ नहीं कोई बिगाड़े को, बिगड़ बिगड़ के आ रहा है, अब देखते जाओ
कि हमने क्या क्या खोया है मैम, कितना कुछ
बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है, जो हम थे वो है ही नहीं
नहीं।
ये अनंत कथा है, हर कथा हर कथा अनंता, तो हमारी कथा तो बहुत ही अनंत है, और इसीलिए जो लिखे जा रहे हैं हम लिखे जा रहे हैं, क्या करें, तभी लगता है कि कुछ सब कुछ लिखना बाकी रह जाता है।
कश्मीरी पंडितों पर और वहाँ की महिलाओं पर इतना अमानवीय उनके साथ व्यवहार हुआ, लेकिन मैम एक ये प्रश्न मेरा आपसे होगा कि महिला साहित्यकारों ने क्या लिखा, कितना लिखा उस समय क्या?
जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कश्मीरी पंडित औरतों के साथ वहाँ तो एक नारा ही चला, जब 19 जनवरी को जो तूफान मचा हर गली से बड़ा बड़ा जुलूस हमारे दरवाजे खड़ा, उस दिन तो हमने सोचा कि आप तो आज तो नहीं बचेंगे, तो वो हमारे वो दरवाजे वरवाजे वो मारेंगे, ऊपर चढ़ेंगे और हमको मार कर पता नहीं क्या क्या करके करेंगे। और उस दिन एक नारा उन्होंने दिया कि बाटा और पाकिस्तान, हमको पाकिस्तान चाहिए, मतलब कश्मीरी पंडितानियों के समेत, और जो कश्मीरी पंडित पुरुष है उनके बगैर, तो ये तो उनका नारा ही था। तो उन्होंने कश्मीरी हिंदू औरतों के साथ कितना जुल्म किया, क्या वो तो क्या बताएं, वो कितनी क्या 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 दोहराएं, गैंग रेप्स, मर्डर्स, तूफान मचाया। तो इसीलिए जो है कि बस भागना तो जाना तो अनिवार्य बन गया,
शायद हम लोगों तक क्यों नहीं पहुंचे, मुझे तो खुद इस बात का बड़ा दुख है। और मैं तो एक बात कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करूंगी कि कश्मीरी पंडितों के निर्वासन के बाद पूरे देश से ही उन्हें घोर उपेक्षा मिली,
वो घोर उपेक्षा। तो इसीलिए ना, क्योंकि देश का वातावरण ही ऐसा बनाया गया था ना कि हिंदू के बारे मत बोलो, हिंदू का पक्ष मत लो, मुसलमानों का पक्ष, हिंदू का पक्ष ले
जाओ, तो नाम पर जो अत्याचार हुए वो तो शर्मनाक है, उनको तो जाने ही दीजिए, लेकिन अपने देश के लोगों ने, हम सब ने थोड़ा भी साथ दिया होता तो शायद आप लोग का समय कुछ कम कटे।
बिल्कुल 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 बिल्कुल
बात का तो
नेट में क्या क्या बोला जाता है, आप वहीं मरे क्यों नहीं, आपने वहां लड़ा क्यों नहीं। हाँ। अरे बड़ी बड़ी बेवकूफ बातें, और ये भी बोलते हैं नेट में बहुत सारे मूर्ख लोग कि जवाहरलाल नेहरू आप ही का था। अरे जवाहरलाल नेहरू पता नहीं कौन था क्या था, मुझे क्या हमें क्या पता, उसका दंड आप हमें क्यों दे रहे हो। अगर हम इस बात में भी, इस बात के लिए भी हम उपेक्षित हो गए कि हमें ब्राह्मण माना गया, पंडित माना, पंडित तो हम, पंडित का अर्थ होता है जो हु नोज, जिसको कुछ पता है, जिसको ज्ञान है। और पंडित, पंडित तो कोई भी जात का व्यक्ति हो, शूद्र भी पंडित हो सकता है। इफ यू नो थिंग्स, अब नामदेव आपके, अब कबीर था, कबीर तो महापंडित था
जी,
उससे ऐसा पंडित कौन था। तो नामदेव तो महापंडित था, उस जैसा पंडित जिसे, जिसे, जिसे पूरे ब्रह्मांड की पता थी, जो इस पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर के सम्मुख व्याप्त था। लेकिन जो आप ब्राह्मण का टैग हमारे साथ लगाते हो, वो ऐसे ब्राह्मण हम है ही नहीं कि जो हमें बचाओ, जिसको हम मतलब जिन्हें अस्पताल की बीमारी हो। कश्मीरी पंडित, कश्मीरी ब्राह्मण एक ऐसी मतलब ऐसा समुदाय है इस पूरे विश्व में जो जाति विहीन है, जिन्होंने कभी जातवाद माना ही नहीं। इसका इसकी गवाही आपको अभिनव गुप्त क्या है वो तंत्रालोक देगा, उनका शैव आगम देगा पूरा। आपको राजदायंगिनी शुरू ही होती है इसी चीज से कि आप कोई भी कर्म करो लेकिन आपका ब्रह्मत्व अक्षुण है। ब्राह्मण होना क्या होता है, ब्राह्मण होना तो जीव हो जिसमें आत्मा है, जिसमें जिसमें शिव अंश है, जो शिव है। तो आप ही नहीं, ये परेशानियां ढाई, हम तो वैसे है ही नहीं, हम तो किसी, अभी अब देख लीजिए हमारे साथ, जैसे हमारे घर में कोई काम करने आएगा वो किसी भी जाति का, और उससे फिर बाद में कमेंट उसने पर कश्मीरी पंडित कितने अच्छे, वो कुछ जानते ही नहीं, वो हमको हिंदू मानते हैं। तो मैंने कहा हिंदू क्यों नहीं मानेंगे, वो ही आप हमारी ताकत हो। तो अपनी ताकत में जोड़ने के बजाय घटाने का ये जो काम करते हैं अपनी दुर्बुद्धि से, अपनी मूर्खता से, तो इस मामले में आप बताइए हिंदू का, हिंदू पॉलिटिकली कितना अनकॉन्शियस है, कितना अचेत है। और हिंदू तो की बात किया रहता है, वो करता है, ये करता है, ऐसे ही हिंदू आपके आरएसएस में
जी
हाउ टू फाइट बैक, who can't strategize. तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी उपेक्षा का, तो बहुत तो अभी भी चल रहा है
जी जी,
वो भी चल रहा है
शायद ना कि 30 साल से अधिक हो रहे हैं मैम, अभी तक चल रहा है,
ये चल रहा है। और ये बहुत बड़ा अभिशाप है हिंदू पर, हिंदुस्तान पर। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ अभिशाप से मुक्त कर दो भारत को, और इनको एक दृष्टि दे दो, एक एक बहुत स्पष्ट और साफ और जो भेदभावहीन दृष्टि दो, इनको संगठित करो ताकि ये अपने भूमि की, अपने देखिए भूमि से ही संस्कृति है, भूमि के बिना संस्कृति कुछ नहीं है।
बिल्कुल,
हमारी कहीं कश्मीरी संस्कृति उस कश्मीर पर्टिकुलर क्षेत्र के कारण है। हमारे जो शिवरात्रि का त्योहार होता है उसमें ऐसी वैसी चीजों से हमें शिव और पार्वती की पूजा करनी होती है जो आपको वहीं मिलेंगी
जी,
संसार में और कहीं नहीं मिलेंगी। तो दैट मीन्स कि वो कितना उस क्षेत्र को कितना जरूरी होना हमारे पास, ताकि हम उस संस्कृति को, हम अपने ईश्वर को के साथ जुड़े रहे, हम अपनी आत्मा के साथ जुड़े रहे। तो ये जो है क्षेत्र की महिमा, ये अपने अपने भूमि की महिमा, अपनी संस्कृति की महिमा, ये जैसे वृंदावन है तो कृष्ण है
जी,
है ना, गोकुल है तो कृष्ण है, मथुरा है तो कृष्ण है। अब आप उसको अगर आप 2 मिनट के लिए भगवान ना करे, उसके बिना आप कृष्ण की अवधारणा को क्या करेंगे, कहाँ से कहाँ करेंगे आप।
बिल्कुल,
अयोध्या है तो राम है,
बिल्कुल मैम,
मिथिला है तो राम है, चित्रकूट है तो राम है, तो राम की रक्षा करनी है तो आपको अयोध्या की रक्षा कर, राम की रक्षा करनी है तो आपको राम तो वैसे सर्वव्यापक है, लेकिन ये जो ये तो एक ये तो देखिए ये एक जैसे हमारे हमारा जो पूरे मस्तिष्क के मतलब नख पैर के नख से लेकर शिखा तक का पूरा एक शरीर जो है एक बंधा हुआ है, एक तभी ये शरीर है नहीं तो अपंग होगा। तो इसी तरह से ये जो पूरा ब्रह्मांड है आपके हाथों में सौंपा गया है, इसको नक्षिक पूरे नख से शिख तक आपको रक्षा करनी है, तभी रक्षा हो गई होगी आपके ईश्वर की भी, आपके राम की भी, आपके कृष्ण की, आपके शिव की भी। ये चीजें नहीं समझाई जाती है, ना कोई धर्म गुरु समझाता है, ना कोई ना कोई ऐसा इंटेलेक्चुअली समझाता है। मैंने आजकल ये फैशन देखा है कि बड़े वो जो तंत्र की साधना करने वाले लोग आजकल तंत्र साधना करवाते हैं, और बहुतों को मैंने सुना जो ओशो की नकल कर दिया, आप कृपया अपना मजहब और पता नहीं बुद्धि बाहर रखिए, जो तुमके पास अपना धर्म यानी कीप योर रिलीजन एंड ये जो है आपका जो इंटेलेक्ट है ना वो बाहर छोड़ के आइए। अरे इंटेलेक्ट तो ठीक है लेकिन अपना धर्म क्यों, जिस धर्म की जहाँ धर्म है से ही तो आपने तंत्र का पूरा आपका तो आपकी शब्दावली वहीं से आई है, आपके जो सारी साधना के जो उपकरण है उसी से। जब आप कुंडलिनी की बात करते हैं वो किसी दूसरे किसी मजहब किसी धर्म अन्य धर्म से नहीं आए हैं, वो पर्टिकुलर धर्म के हैं। कुंडलिनी शब्द ही मैं सनातन धर्म से आया है। आप सनातन धर्म को बाहर छोड़ो छोड़ो फिर अंदर आओ। हाँ अगर आप किसी को बोलो कि भाई आप मजहब जाति बाहर छोड़ो तो फिर आओ अलग बात है, क्यों, क्योंकि उसे ऐसी ट्रेनिंग लेनी है जिसकी टेक्निक जिसकी जो जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स है वो सनातन धर्म में से है
जी।
तो ये बड़ी बड़ी सूक्ष्म चीजें हैं जिन्हें देखिए इन्होंने इतने मदरसे बनाए हैं। अभी मैं पढ़ रही थी कहीं केरला में हजारों मदरसे काम कर रहे हैं, एक एक गुरुकुल मैंने नहीं देखा कभी।
बिल्कुल ठीक कह रहे हो,
कहीं नहीं देखा। तो कुछ ना कुछ टीचर तो ऐसे होंगे ना हमारे पास उपलब्ध जो अगर गुरुकुल करो वो सही तालीम देंगे, वही सही शिक्षा देंगे आपको। और हम कहाँ कहते हैं कि भाई किसी को किसी जो दूसरा धर्म दूसरे मजहब का है उसे उसका कुछ का बिगाड़ो, उसको भी करो शांति से रहता है रहने तो अच्छा आनंद और मौज है, उसकी बड़ी खुशी की बात क्या है। लेकिन मनुष्य की तरह रहे ना तो उससे हमारी शोभा बढ़ेगी, उससे हमारा आनंद बढ़ेगा। लेकिन राक्षस की तरह रहेगा फिर तो राम ने भी रक्षा बचाया नहीं, जबकि रावण है वहां पंडित था
जी,
लेकिन उसको मारना जरूरी पड़ा।
बिल्कुल
अभिनव गुप्त कहते हैं रावण के मरने से तंत्र साधना की शिक्षा में जो क्षति हुई है वो अभी तक पूरी नहीं करी गई है, लेकिन राम को उसे मारना ही पड़ा
जी।
बताइए
क्यों बड़ी
जरूरी था।
बिल्कुल
तो क्या करें, ये जो मैं एक लेखिका हूँ लेकिन मैं इस देश की राजनीति की मारी हूँ, मेरा सारा समुदाय इस देश की राजनीति का मारा हुआ है, इसलिए मेरा साहित्य और इस देश की राजनीति ये सारा साथ साथ ही चलेगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं कोई वैसी लेखिका नहीं हूँ जो साहित्य लिखने के लिए लिखता है, ये मेरा आयुध है और इस आयुध से मुझे उनको भी समझानी है बात जो तथाकथित लेखक भी है, और लेकिन मेरे आयुधों के विरोधी आयुधों से बात करते हैं जिससे मेरे धर्म मेरी संस्कृति मेरी कंटिन्यूटी मेरी निरंतरता मेरी संस्कृति को क्षति होती है, और मुझे इस आयुध से मेरे जो प्रत्यक्ष दुश्मन है उनको उनसे उनको भी मुझे लोहा लेना है इससे, तो इसलिए इसका मुझे मल्टीपल यूज करना है, बहुविध प्रयोग करना है मुझे इन उपकरणों का
जी।
तो ये मैं बोलती जा रही हूँ,
ये सत्ता नहीं सुन रही है, तो परम सत्ता आप लोगों का ध्यान कर रही होगी, करेगी इसी
जी
उम्मीद।
बहुत सुंदर बोला आपने, ईश्वर करे आपके बातें सच हो, आपकी बातें हो, परम सत्ता सुन रही हो, और इस पूरे भारत की, सनातन धर्म की, इस संस्कृति की रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे प्रभु हमारी, हर प्रभु हर दुश्मन से, हर शत्रु से।
और मैम एक चीज और है कि आप लोगों के लिए निर्वासित शब्द का इस्तेमाल होता है, आप लोग खुद भी कहते हैं इस चीज को, लेकिन मुझे हमेशा बहुत बुरा लगता है। मेरे ख्याल से निर्वासित मतलब तो होता है कि किसी दंड के तहत किसी को देश से निकालना है ना, तो
हाँ
मेरा
हाँ
ये प्रश्न है अपनी व्यवस्था से भी, कश्मीरी की कश्मीरी पंडितों का ये कैसा अपने देश में निर्वासन है, या हम जनमानस से भी एक प्रश्न होना चाहिए कि किस अपराध का उनको दंड मिल रहा है और किस देश से उनको निकाला गया है।
निर्वासन तो फिर भी ठीक शब्द है, यहाँ तो माइग्रेशन कहते हैं।
कहते हैं जी।
माइग्रेशन माइग्रेशन यानी कि जब आपका कहीं कोई तबादला हो जाए, या कहीं कोई पक्षी दूसरे जगह जो मौसम अच्छा होता है तो उसके लिए चला जाए। यहाँ तो इतना इतना मतलब घटिया शब्द रखा गया है सरकार की तरफ से, तो यही तो सारा खेल है ना, यही तो सारी स्ट्रेटजी है, यही तो सारी कॉन्स्पायरेसी है, ये दुराभिसंधि है हमारे विरुद्ध। अब जो 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 सरकार बोले, जैसे यहाँ के अखबारों में आतंकवादियों के लिए मिलिटेंट लिखा जाता है, तो
जी आतंक टेररिस्ट
खून खोलता है, लेकिन अब उनको मिलिटेंट ही कहना है। ये सरकार जो बोले तो सब वो तो मानता है, फिर ना सत्ता बहुत बड़ी चीज होती है, लोग जिम्मेदार नहीं होते। देखो आतंकवाद जो है ना, इतना परवान नहीं चढ़ा होता अगर सत्ता ने इनका साथ ना दिया होता, वही कुचला होता जहां से शुरू हो गए थे,
जी।
आज नामो निशान नहीं होता और हम अपने घरों में होते। लेकिन नहीं, उन्होंने बोला हम इनको निकालेंगे, इनको निकाल बाहर करो, तुम जिहाद करो, तुम आतंक करो, तुम भारत को मिटाओ, तुम हिंदुओं को मिटाओ, तुम हिंदू संस्कृति के को खतरा दो, तुम गजवाए हिंद करो। तो शासन के हाथ में है, जो शब्द वो दे तो दे, या तो निर्वासन हम कहते हैं, फिर भी इसमें कुछ है। यहाँ तो माइग्रेशन है, माइग्रेंट होता, हम तो मैं तो माइग्रेंट हूँ, माइग्रेंट यानी कि मुझे वहां का मौसम पसंद नहीं आया, मैं यहाँ मौसम यहाँ की गर्मी खाने आई।
जी।
तो ये बड़े बड़े लेवलों पे अत्याचार है भावना जी,
जी मैम,
इससे तो हमारा ही माथा खराब हो जाता है, फिर तो सोचते हैं कि बस हम मैं विस्मृति में चला जाऊं।
चलिए मैम, हमारी बातें अगर सुन रहे हो तो जो भी सुन रहा है, मैं तो यही चाहूंगी कि हम थोड़ा सा सोचें तभी कुछ कर सकेंगे, कि ऐसा तो हम में से किसी के साथ भी हो सकता है जैसे हालात अब बन रहे हैं।
अरे पूरे भारत का इस समय उस पर है, मतलब क्या कहें, इस कगार पर है, पूरा भारत इसी कगार पर है
जी।
तो भारत की रक्षा करे भगवान, करे राम, राम करे
जी, बिल्कुल, जिसके भी साथ गलत है, लेकिन अब जब हो रहा है तो उस बात को कहने में तो कोई डर नहीं होना चाहिए और ना ही कोई दिक्कत होनी चाहिए।
नहीं डर क्यों होगा, बिल्कुल नहीं डर होना चाहिए।
मैम अलग विषय से थोड़ा सा आए, मैं आप एक आखिरी प्रश्न आपसे ये करना चाहूंगी,
जी
हिंदी और मैथिली के अप्रतिम कवि या नागार्जुन थे मतलब, और
हाँ,
उनको
हाँ,
आमंत्रित किया था कश्मीर में, ऐसा मैंने
हाँ,
पढ़ा
हाँ,
है,
हाँ,
के
असल
बारे
में
में।
क्या था कि मुझे कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो PhD करने का मौका नहीं दिया गया, तो फिर मुझे अपने को वहां पर रजिस्टर करना पड़ा पटना में। पटना में
अच्छा
मेरे गुरु जो थे वो नंद किशोर नावल बने,
जी,
जो हिंदी के बहुत बड़े आलोचक लेखक थे, विद्वान थे, तो उनके उनके घर में आए हुए थे नागार्जुन, वहां मेरी मुलाकात उनसे हुई, तो फिर काफी परिचय गहरा हो गया मेरे साथ। मेरी माँ थी, और मेरी माँ को उन्होंने बोला कि तू तो पूर्व जन्म की मेरी बेटी है।
अरे वाह जी,
अब जो कुछ भी था वो सब भगवान जानता है, वो क्या पता, लेकिन वो बहुत ही अलग से बोलने का सारा मंजर है। तो फिर उन्होंने
चलिए
स्वयं कहा कि मैं क्षमा तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, तो मैंने कहा आ जाइए। तो कुछ महीनों के बाद वो मेरे पास आए कश्मीर, और महीना भर वहां रहे, और फिर वहां गोष्ठियां होती रही, बहुत कुछ होता रहा, और उन्होंने कश्मीर के माहौल को देखा
जी,
तो बड़े ही परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। और फिर आपको मैं बहुत जबरदस्त बात कहना चाहती हूँ कि उस समय उन्होंने ये कहा कि कश्मीर तो बुरी हालत में है और भारत को इसे वापस प्राप्त करना चाहिए, यानी कि उसको समझ में आ गया यहाँ तो सब कुछ निजामे मुस्तफा चल ही रहा है, तो ये हिंदू यहाँ कैसे रह रहे, इन्हीं का कमाल है
जी।
और फिर जब हमारा वो हुआ, वहाँ एग्जोडस हुआ
जी,
तो फिर उन्होंने सुना कि मैं शरणार्थी शिविर हूँ, मैं हूँ। और उसके बाद एक मैंने छतरपुर में एक कमरा लिया था, वहां पर थी, तो शरणार्थी शिविर में भी मिलने आए थे। तो फिर मुझसे एक दिन उन्होंने मेरे दफ्तर चले आए पता कर करके, और बोले कि अब मैं अपनी बेटी से, मेरे साथ मेरी माँ थी वहां आए। तो तब तक मुझे जो वामपंथी लेखन का बड़ा वो कुछ खतरनाक तजुर्बा हो गया था, बल्कि एक लेखक से मिलकर मुझे तो बहुत ही चित्र लगा था, जब उसने ये कहा था क्या करें भाई, क्यों ना मुसलमान ही हो जाए। तो ये सारी बातें मेरे मन में गूंज रही थी, तो मुझे इन लेखकों के प्रति बहुत वितृष्णा, घृणा के हद तक हो गया था कुछ अंदर, और मुझे लगा था हम अकेले हैं और हमें अकेले साहस करना पड़ेगा सच लिखने का। तो मुझे बहुत कुछ वहीं से समझ में आया। तो जब वो फिर उस दिन हमारे घर आए, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुझे बताओ इन लेखकों को क्या हो गया, और मैंने देखा कि सब लोग चुप है हमारे प्रति। हम दरा था, हम सड़कों पर थे, हम दुनिया भर के कम्युनिटी हॉलों को शरणार्थी शिविरों में बनाया गया, कन्वर्ट किया गया था। जो आगामी मेरा उपन्यास है उसमें मेरा पूरा एक लेखा है शरणार्थी शिविर का, कि कैसे अपने लोग, अपने देश के लोग अपने देश में शरणार्थी शिविर में कैसे रह रहे हैं, क्या क्या सलूक होता है उनके। और मैं आपको एक बात बताऊंगी, उन दिनों बहुत प्रेस वाले आते थे हमसे मिलने
जी,
और उनमें कुछ मुसलमान प्रेस वाले मतलब रिपोर्टर होते थे, वो इतने खुश रहते थे, कितने खुश होते थे, मैं आपको क्या बताऊं। वो हंसी, वो खिलंदड़िया मुझे आज भी याद है। उस समय मुझे हैरत होती थी, मैं मन में सोचती थी ये हंसते क्यों है, क्या इनमें कम से कम मानवीयता तो होगी, इनमें इनको ये दुख तो होगा कि नहीं बेचारे मनुष्य ही है। कि धीरे 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 मैंने समझा सब कुछ। तब तक मैंने कुरान वुरान भी नहीं पढ़ी थी, और कुरान पढ़ने के बाद तो मुझे बहुत अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आया, बल्कि अभी भी बहुत कुछ समझना है। मेरी बातें तो भाई बहुत कमनल है, मैं तो करूंगी क्योंकि मेरे पे यही तजुर्बा है। तो तब मैंने जब नागार्जुन से पूछा कि आइए ये जो लेखक है ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, चुप है जैसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उल्टा क्या करते हैं भाई, कश्मीर के जो लोग हैं उन कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनको आर्मी मार रही है, ये मैंने ये उनके बयान होते थे, उनको वहां कर आर्मी को वहां संयम बरतना चाहिए, वो करना चाहिए, जबकि आर्मी बहुत संयम बरत रही थी। तो तब पता क्या बोले नागार्जुन, बोले क्षमा, मैं अंदर से आरएसएस के साथ हूँ। तो मुझे अच्छा लगा ये सुन के, लेकिन मैंने ये कहा, मैंने कहा आप अंदर से हो ना, बाहर से हो जाओ,
बिल्कुल
आपके इस अंदर से होने से हमको क्या लाभ मिल रहा है,
कौन सी हिचक ऐसी।
हाँ बोलते नहीं, कुछ फायदे होते हैं ना, कुछ रोजगार के मामले होते हैं ना, इनके इनके क्या उनके भी थे, ये बात है
जी मैम।
तो ये जो फंडिंग होती है एनजीओस की, ये जो विदेशी फंडिंग होती है उसमें ये लोग खूब अपना माल कमाते हैं, वो करते हैं, इसे इन्होंने अपना अपने को विधर्मी कर दिया, अब इंटेलेक्चुअली कर दिया, मतलब गलत गलत नैरेटिव गढ़ के, गलत तर्क गढ़ के, जो तर्क है ही नहीं उनको तर्क की तरफ सामने लाकर, जैसे सरकार क्या थोपती है, जैसे हमको माइग्रेंट माइग्रेंट बोला, ये तो गलत है ना, सिरे से गलत है, लेकिन सरकार ने सुना तो अब क्या करोगे। इसी तरह से इंटेलेक्चुअल जो सर, जो प्रो सरकार है, जिसको जिसके ऊपर सरकार का हाथ है, वो अगर कोई झूठ गढ़ता है और बोलता है और छपता है, वो झूठ सच हो गया ना,
बिल्कुल हो गया जी।
तो हमारा सच कहाँ है? वो है ही नहीं, ना वो छपेगा, ना वो कोई बोलेगा, ना वो, क्योंकि उसे कोई लाभ ही नहीं है, उन लोगों को लाभ ही नहीं। और हम, हमारे हमारा ना कोई कोई रिसोर्स है, ना कोई एनजीओ है, कोई हमारे साइड में है ही नहीं, अपने इस देश के साइड में ही नहीं कोई, इस देश के पक्ष में ही नहीं कोई, इस देश की संस्कृति के पक्ष में ही नहीं कोई, इस देश के भविष्य के पक्ष में ही नहीं कोई। तो ये नागार्जुन की वो थी, और उसके बाद नागार्जुन के साथ मेरा काफी वो होती थी, बड़ी मुड़बेड़े, बहुत जो बड़ा रोए वो। मैंने कहा आपके रोने से क्या होगा, जाकर उन कवियों और लेखकों के जान को रो जो चुप है, जो मुसलमानों के लिए रो रहे हैं। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि मैं अंदर से आरएसएस के साथ हूँ। हालांकि मैं ये भी कहती हूँ, अगर आजकल के आरएसएस को वो देखते ना
जी,
तो वो तो कहते भी मैं वामपंथियों के साथ हूँ।
जी बिल्कुल, क्या कहा
चलिए बहुत अच्छा लगा,
बातें बहुत मैम, इतनी सच्चाई है तो ये तो नहीं कहूंगी अच्छी लग रही, क्योंकि भगवान ना करे ऐसी बातें सुननी भी पड़े कभी, लेकिन फिर बहुत अच्छा लगा ये जानकर।
लेकिन भावना जी, अब जो अच्छा, देखिए सच्चाई अगर कटु भी हो ना
जी जी,
वो ही अच्छी होती है। क्यों? अगर आपने सच्चाई से काम लिया तो आगे अच्छा होने का संभावना होती है।
नहीं नहीं,
इसलिए यही कहो कि सच्चाई अच्छी है जैसी भी है वो, जैसे कि दवाई कड़ी से कड़ी भी होना अच्छी है, क्योंकि उसे जीवन दान मिलेगा।
जी मैम,
है ना, तो झूठ कितना मीठा भी हो तो उसे, क्योंकि उसे मृत्यु आखिरकार मिल जाएगी। मृत्यु किसकी? मृत्यु उस देश की, मृत्यु इस देश की संस्कृति की, मृत्यु इस देश की निरंतरता की, मृत्यु इस देश के मूल संभावना की।
जी मेरा तो ये मतलब है मैम कि ऐसी सच्चाई
नहीं, मैं समझ गई, मैं समझ गई, मैं ये सुनना भी कठिन है, और बोलने वाले पर क्या बीतती है वो आप समझ सकते हो।
ये झूठ कर रह जाए ऐसा ईश्वर से कामना है, लेकिन अब देखिए कब ईश्वर हमारी सुनते हैं। लेकिन क्या कहा जाए मैम, अब आपने इतना समय दिया और इतनी बातें हमें बताई, बहुत अच्छा लगा मैम। हम फिर आपसे, आप चाहेंगे कि आप चुभन के पटल पर आए और अपनी बात रखें।
जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।